اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر صلوات بھیجے محمد علی محمد پر جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ کل رات ایک مومن کو ہمارے شہید کیا گیا, مومن بھائی کو منصور زیدی کو, ان کے لیے اور تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اور دوسری درخواست یہ کہ انہیں کے صاحبزادے زخمی ہیں اور ایک اور مومن بھی زخمی ہیں, ایک عمار رضوی ہیں, دوسرے شہید جواد رضوی صاحب ہیں, کسی اور جگہ زخمی ہوئے. دعا کیجیے بحق بیمار کربلا, اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دل سے ان زخمیوں کے لیے, تمام مریضوں کے لیے دعا کیجیے. بعد میں موقع نہیں ملتا اس لیے پہلے دعا کرا رہا ہوں کہ بحق بیمار کربلا ان تمام کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا ہو. ایک سلوات بھیجیے بلند نواز سے محمد علی محمد پر. دیکھیے ہم نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا اور اس سے پہلے سے بھی گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ شیطان باز نہیں آئیں گے, یہ بھٹ سے سر نکالیں گے. اور محرم میں خاص طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے, کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دو مہینے آٹھ دن کی عزاداری ہے, ایسا جھگڑے کو ہوا دے دو کہ بس یہ پھر چلتا رہے, اور ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر. لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. عاشور پہ دیکھا, دنیا نے دیکھا, چہلم پہ دیکھا, اسی کراچی شہر میں دیکھا کہ 60 اور 70 لاشیں اٹھا کے بھی ہم نے اپنے جلوسوں کو منزل تک پہنچایا. ایک مجلس نے نہ کم ہوئی نہ رکی, نہ جلوس کم ہوا نہ رکا. ان کی سازش کو سوچتے یہی ہیں کہ کریں گے اس طرح کی حرکتیں, مجلسیں بھی ڈسٹرب ہو جائیں گی, جلوس بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ کتنی منظم قوم سے اس کا واسطہ پڑا ہے, اور یہ نظم و ضبط کسی تنظیم نے ہمیں نہیں سکھایا. یہ 1400 سال یہ طول تاریخ ہے, یہ کربلا سے ہمیں ورثے میں ملا ہے. اگر ہم میں یہ نظم و ضبط نہ ہوتا تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے. ہماری فتح کا راز ہمارا ڈسپلن ہے, ہمارا نظم و ضبط ہے. تو عزاداروں, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں, مزید امتحانات رکھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ عہد کر لیجئے کہ کوئی مجلس کوئی جلوس ڈسٹرب نہیں ہونے دینا ہے, ہر جلوس کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے, پینک نہیں ہونا ہے. کیا ہوگا بابا, مار دیے جائیں گے نا, ویسے بھی تو مر رہے. میں کہتا ہوں کتنا عظیم انسان ہے, اتنی سانسیں لے کر آیا تھا مگر حسین نے اس کو شہادت دے دی, حسین کے در سے اس کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. ہمارا ایک ہی جواب ان کے دل دہلانے کے لیے کافی ہے, اور عاشور نہیں, اس عاشور تک نہیں, قیامت تک ہمارا یہ نعرہ. جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے شہداء کے لاشیں اٹھاتے وقت, 100 لاشیں, 17 -17 درجے حرارت, -10 درجے حرارت, -7 درجے حرارت میں 100 لاشیں اٹھا کے ہم بیٹھے 3-3 دن 4-4 دن, کون جیتا, کون جیتا؟ ہمیشہ ہمارے خون نے ان کے اسلحوں کو شکست دی ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ہتھیار اتنا بڑا ہے کہ اپنا وار کرنے کے بعد जब हमारा नारा सुनते हैं तो इनकी मौत हो जाती है कि हम तो समझे थे कि इनके दिल टूट गए होंगे, इनके हौसले टूट गए होंगे, ये अब भी जिंदा हैं, तुम्हें नहीं पता हम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुए। लब्बैक या हुसैन, 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 जज़ाकअल्लाह। किसी साजिश का शिकार न मत हो जाइएगा, समझ गए आप। बहुत से अनासिर, एक नहीं कई किस्म के एलिमेंट, यहां तो हमारे नाकिबत अंदेश साहिबान इख्तदार ने तरह तरह के दुश्मन खुद पाले हैं ना, आस्तीनों में सांप। इनको तो बड़ा सांप पालने का शौक था ना, और वो जब सबसे बड़ा जो पूरे सपोलियों की पनीरी लगा के गया था जियाउल हक, जब तक उसको इसाले अजाब ना पहुंचाऊं मेरा तो मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे तो चैन ही नहीं आता। वो खबीस जो जिम्मेदार है आज पाकिस्तान के इन हालात का, जिसने अपने जाती इख्तदार को बचाने के लिए जहन्नम में झोंका इस पूरे मुल्क को, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कुछ नहीं होता। तुमने देख लिया ना इस 34-35 साल में, देख लिया हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं। हमें झुकाने वाले खुद आज जलील दुनिया में जलील हो चुके, रुसवा हो चुके हो रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो किस्म किस्म के अनासिर, किस्म किस्म के एलिमेंट माशरे में, मैंने कहा ना एक किस्म के नहीं है, कई किस्म के हैं। सब चाहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, काम कर दो, उस पर जाएगा, वो सोचता है उस पर जाएगा, वो सोचता है उस पर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कितने किस्म के एलिमेंट्स। अच्छा मौका है मुहर्रम, अच्छा मौका है, करेंगे, हंगामा होगा, शहर बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद होगा जब हम चाहेंगे, हमारी मर्जी से होगा। समझ गए मेरी बात, जब हम चाहें। यार यार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना है, समझ गया मेरी बात। अली के शियो, अगर कोई ये समझता है कि खेल जाएगा इस चक्कर में, भूल जाओ, वो जमाने लद गए, वो जमाने गए। हम तो पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे, इसलिए हर तरफ से होशियार रहना है, इस्तेमाल नहीं होना है, इस्तेमाल नहीं। हमें मालूम है कि कब क्या करना है, ठीक है ना। आजादारी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, किसी जुलूस को, किसी शब्बेदारी को। 2 महीने 8 दिन की आपकी आजादारी है कि नहीं है। 100-100 लाशें उठाएंगे, अपने जुलूस भी मंजिलों तक पहुंचाएंगे, अपनी शब्बेदारियां भी पूरी करेंगे, अपनी मजाली सियाजा भी पूरी करेंगे। वादा है कि नहीं है हुसैन से, वादा है। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है भाई, जान है ही जाने के लिए। हमेशा आपसे कहता हूं जान जो जिंदा है उसको जान नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं ना कि हुसैन के नाम पर मरने वाला मरता नहीं है, हुसैन जिंदा कर देता। कितने जानते थे मंसूर जैदी को, मैं खुद ही नहीं जानता था, आप कहाँ जानते थे, कौन जानता था। चंद लोग ही तो जानते होंगे, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके खानदान, लेकिन शहीद हो गया। आपको मालूम है कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसका नाम क्या हुआ है, जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मजलिसें हो रही हैं, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमरीका में, अब तो एक सेकेंड में जाता है ना। शैतानों ने अपने काम के लिए जो शैतानी आला इस्तेमाल किया है, हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कामों के लिए उसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। यही तो बच्चों को समझा रहा हूं कि इन अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करो, शर फैलाने के लिए नहीं है ये चीजें, फितना फैलाने के लिए नहीं है। तो पूरी दुनिया में उसकी नाम की फातिहा पढ़ी जा रही है, उसको याद किया जा रहा है। वैसे भी तो इंतकाल होता है, लोगों को हो ही जाता है, कौन जानता है, रिश्तेदार जानते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं, उसके आगे कौन जानता है। लेकिन अब आज मंसूर जैदी का पूरी दुनिया में उसका नाम चला गया, उसके लिए फातिहा खानी हो रही है, उसके नाम के साथ देखा जा रहा है शहीद मंसूर जैदी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है भाई, फिर कैसा घबराना। कोई घबराने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। हमारा आपका मौला हमारे सरों पर है, उसका साया है, हम उसकी हुकूमत में जी रहे हैं, वो हमें देख रहा है। हम उसे नहीं देख रहे तो क्या हुआ, वो हमें देख रहा है, वो हमारे दिलों से भी वाकिफ है। हमारे दिलों में जो है ना वो भी उससे पोशीदा नहीं है, लिहाजा हौसले के साथ चलना है। और आपको मैं क्या अर्ज करूं, आप आजमाए हुए लोग हैं, आप हौसले से ही चलेंगे इंशाल्लाह। अब नारा मैं लगाऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है, जवाब आप दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इतनी ही बोला दवा से सलवात राय फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए कोशिश करते हैं आज। आखरा कद तसम्मा आलमन वलैस बही, एक और शख्स है जिसने अपना नाम खुद ही आलिम रख लिया। मौला फरमाते हैं, पहले तो सिफात बयान कर दी ना, कल इशारा किया कि कौन है जो हिदायत के मिनारे होंगे, कौन से उलमा हैं, कौन लोग हैं कि जो लोगों को अल्लाह से डराएंगे, अल्लाह के अहकाम की तालीम देंगे, खौफ दिलाएंगे, गुनाहों से बचने की तालीम देंगे, कबीरा हो या सगीरा हो उनसे बचने की तालीम देंगे, और कौन है और वो क्या करेगा, अब उसकी सिफात भी सुन लीजिए। क्योंकि आप कहेंगे कल ऐसे खामखा में कहते रहे, दलील तो है नहीं कोई, तो अब ये दलील दे रहा हूँ आपको। मेरा और आपका मौला फरमाता है, वाखरा कद तसम्मा आलिमन वलैस बही, एक और है जिसने अपना खुद ही नाम आलिम रख लिया, वलैस बही, जबकि वो नहीं है। नाम आलिम रख लिया है मगर नहीं है, मौला फरमा रहे वो नहीं है मगर उसने अपना नाम रख लिया है, आलिम नुमा बन गया है, गया था जियारत के लिए। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में, काश ये इशारे भी पहुंच जाते आप तक। गया था जियारत के लिए, दो तीन महीने रुक गया, वापस आके हुज्जतुल इस्लाम बन गया। क्या कर लेंगे आप, जाली डॉक्टर को पकड़ा जा सकता है, जाली इंजीनियर को पकड़ा जा सकता है, जाली मुल्ला को कैसे पकड़ेंगे आप, कोई है तरीका तो बता दीजिए मुझे। अगर जाली मुल्ला को पकड़ने का कोई तरीका होता तो इतने भारी भरकम जाली मुल्ला, जिनके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रक आता है उनको गाड़ी में तो घुस ही नहीं सकते वो, और यकीन माने कि ऑर्डर दे के एक स्टूडियो में स्पेशल कुर्सी बनवाई और बेचारों ने बड़ी महंगी कुर्सी बनवाई लाख डेढ़ लाख की, चलते वक्त अपने साथ ले गया कि तुम्हारे तो किसी काम की है नहीं, मेरे साइज का कोई है ही नहीं। ये मुझे खुद चैनल वालों ने बताया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब चैनल वाले का नाम दे दूंगा और पीछे पड़ जाएगा उस चैनल के, चैनल वालों ने खुद बताया कि हमने कुर्सियाँ बनवाई भाई इतनी महंगी, वो उठा के क्या के रखवा दो सुजुकी में, तुम्हारे किस काम की है, मेरे घर पे काम आ जाएगी है। तो कोई मैयार है कैसे पकड़ेंगे, जाली वकील को पकड़ सकते हैं, जाली डिग्रियां पकड़ी जा रही है ना सबकी, जजों की भी पकड़ी जा रही हैं, जजों की भी जाली डिग्रियां सामने आ गई हैं। अब तो तौहीन अदालत तो नहीं हो रही ना भाई, मैं उनकी कह रहा हूँ जिनकी डिग्रियां जाली हैं, इनकी तो असली हैं बड़ों बड़ों की। अल्लाह इनको सलामत रखे, हुक्मरानों के लिए, हमारे लिए नहीं। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब, तो भाई जाली डॉक्टर पकड़ सकते हैं आप, छापा पड़ जाता है ना, जाली डॉक्टर जाली हकीम नहीं है, इसके बाद डिग्री वैसे ही बैठा हुआ है, उल्लू बना रहा है, पकड़ लिया उसको, बंद कर दिया, जाली वकील पकड़ लेंगे, खुद वकला पकड़वा देंगे, भाई ये जाली एडवोकेट घुसाया हमारी दफों में, पकड़ लो, इसके बाद डिग्री नहीं है। डिग्री होने के बाद बेशक खुद ही दो नंबर हो कोई मसला नहीं, डिग्री तो है ना, पढ़ा लिखा तो है, किसी यूनिवर्सिटी से लिया तो है भाई, डिग्री तो डिग्री होती है ना, इतना तो समझते हैं आप। बारह सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खत्म हो गई बात, वो डिग्री तो है ना, डिग्री तो है पास, लेकिन डिग्री ना हो तो फिर अंदर जाएगा, जाली डिग्री होगी जब भी अंदर जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि उलमा का कोई मेयार है, किसको पकड़ेंगे आप, कैसे पकड़ेंगे आप, हूं मैं जाओ कर लो जो करना है। पहचाना कब जाता है, जब जालिमों की हिमायत में टीवी पे लाइव बैठ के जबाने खोलना होता है, और जब वो जालिम मुश्किल में पड़ता तो भाग लेते, आप नजर नहीं आ रहा कोई, अरे भाई आप तो बड़े चैंपियन बन रहे थे, अब आइए ना बुरे वक्त में भी साथ दीजिएगा, वे कोनो पकड़ लो तो पता चल गया जाली जो असली था वो उस वक्त भी असली था। जब तुम सारे दरबारी बने हुए थे, सरकारी बने हुए थे, हर बात में सरे तस्लीम खम कर देते थे, जिनके सर ऊंचे थे अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी ऊंचे थे, अब भी ऊंचे हैं, मौला ने रखे उनके सर ऊंचे, मौला ने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो आज शर्मिंदा हैं जो कल चमचागिरी में लगे हुए थे, समझ में आ गई, तो वहां पकड़ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप उनका कर क्या सकते हैं, पता चल गया ना, बस कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं। कौन पकड़वा सकता है, कोई भी नहीं पकड़वा सकता। तो हर जाली को पकड़ा जा सकता है, जाली डॉक्टर, जाली वकील, जाली जज, जो भी जाली इंजीनियर, सबको पकड़ सकते हैं आप। जाली मुल्ला को पकड़ने का कोई मयार न हमारे बिरादरान के हैं, यकीन जानिए। बड़े बड़े जैयद उलमा, मेरे दोस्त मकतब के, दूसरे मकतब के उलमा, वो खुद रोते हैं इस बात पे, कैसे ऐसे दो नंबर आ गए जिनकी वजह से ये सारा फसाद बरपा हुआ है। बहुत जैयद उलमा जब हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनका भी रोना यही है कि भाई क्या करें, जिसकी मर्जी पगड़ी बांध के आ जाए। अब समझ में आया, आखरा कत समय, आखिरी जमाने में ये होगा, जिस जमाने में तुम जी रहे हो, जिस जमाने में मैं जी रहा हूं, आखरा कत तसम्मा आलिमन वले सबही, एक और भी होगा जो खुद ही अपना नाम आलिम रख लेगा, भाई खुद ही रख लेगा, वले सबही, जबकि वो नहीं है। फक्तबसा जहां एला मिन जो हाल व अजालील मिन जुल्लाल, और ये वो है कि इसने जमाने भर की जहालतों को जाहिलों से जमा किया है। मौला फरमाते हैं कि ये वो है कि जिसने फक्तबसा जहा एला मिन जो हाल व अजालील मिन जुल्लाल, जिसने सारी जहालतों को जाहिलों से जमा किया, यानी जो इसके पास है भी वो भी इसने जाहिलों से लिया है। कम अज कम उलमा की सोहबत में बैठता तो अच्छी बातें तो सीखता, क्योंकि जाहिलों में ही बैठा। अब एक जरा सी अलामत बताते चले आपको, एक और जगह मौला ने फरमाया है कि इस दौर में जमा हो जाएंगे लोग, तफक्कुह करेंगे। तफक्कुह भाई ये तो अच्छी बात है ना, गौर व फिक्र करना। मौला फरमाते कि नहीं, तफक्कुह काहे में करेंगे, ला दीनियत में, यानी दीन को बिगाड़ने में गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे रहा है कि दीन में गौर व फिक्र करो, दीन फैलाने में, अइमा तहरीन दीन फैलाने में। मौला फरमाते वो जमाना आएगा कि जब ला दीनियत के लिए तफक्कुह करेंगे, यानी खूब गौर व फिक्र करेंगे, घरों में बैठ के मीटिंगें करेंगे, कौन सी बात निकाली जाए जिससे नमाज को डैमेज करो, जिससे रोजे को डैमेज करो, जिससे अहकाम को डैमेज करो। समझ में आ रही है ना बात हमारी, आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है हमारी गुफ्तगू को। सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ला दीनियत पे तफक्कुह करेंगे, बच्चों में बेदीनी फैलाने पे गौर व फिक्र, कौन सा नया हरबा लाऊं, कौन सी नई चाल लाऊं, किनको बेदीन बनाऊं, इनको दीन से हटाऊं, इनको दूसरे रास्तों पे लगाऊं, इनको गुमराही के रास्तों पे चलाऊं। मौला फरमाते ये कौन है, ये वो है फक्तबसा जहाला मिन जहाल, इसने जाहिलों में बैठकर जाहिलों से कुछ जहालतों को जमा कर लिया, वाजालील मिन जुल्लाल, और गुमराहों से गुमराहियों को ले लिया। कौन कौन, आखरा का तसम आलिमन वाले सभी, वो जिसने अपना नाम खुद ही आलिम रख लिया जबकि वो आलिम नहीं है। जाहिलों से इसने जहालतों को लिया, गुमराहों से इसने गुमराहियों को लिया। नसीहत कर रहा हूं बच्चों को जो यहां बैठे हो, मासूम बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे, खबरदार, दीन से बाहर कुछ भी नहीं है, शरीयत के बाहर कुछ भी नहीं है। 124,000 अंबिया का वारिस है हुसैन। क्यों वारिस है, इसलिए कि 124,000 अंबिया की मेहनतों को बचाया है हुसैन, मिटाया नहीं है। इससे बड़ी कयामत तक कोई दलील है ही नहीं कि हुसैन ने किस लिए कुर्बानी दी। मिटाया नहीं है अंबिया की मेहनतों को, बचाया है। अपने नाना की मेहनतों को मिटाया नहीं है, अपने नाना की मेहनतों को हुसैन ने बचाया है ना। यही तो आप कहते हैं कि दीन बचाया, दीन बचाया। इसके अलावा कोई बात तुम्हारे कानों में डालने की कोशिश करे, खबरदार रहना, समझ लेना कि ये वही है जिसके मेरे लिए मेरे मौला ने फरमाया कि ये वो जाहिल है जिसने जाहिलों से जहालतों को जमा किया और गुमराहों से गुमराहियों को। वाजालील मिन जुल्लाल, ये करता है ये काम, इस तरह से लेकर आता है। और फिर बात यहीं पर नहीं है, वरना सबा लिन्ना से शरकन, और लोगों के लिए क्या क्या चीजें जमा करता है, हबा एला मिन गुरूरिन व कौले जोरिन। मर ये वो है कि जिसने झूठ और फरेब के जाल बिछा रखे हैं लोगों को फंसाने के लिए, शरकन लिन्नास वनसवा लिन्नास शरकन, इसने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए झूठ फरेब मकर के जाल और फंदे फैलाए हुए, यानी जाल फैला के बैठा हुआ है, कहाँ से पकड़ूं? ये जवान दीन की तरफ जा रहे, पकड़ो इनको, किधर जा रहे हो? इधर आ जाओ, किधर जा रहे हो? इधर आ जाओ, ये देखो हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, ये रहा सीधा जन्नत का रास्ता, ये देखो इस किताब में क्या लिखा है, कुतुब जल्लाल गुमराह कुतुब, दीन से हटाने वाली कुतुब सामने दे दो लिखा, तो उस बेचारे नौजवान को क्या मालूम कि ये जो हवाले दे रहा है सच्चे हैं कि झूठे हैं, गलत है कि सही है, बस लिख दिया, लिख दिया, और किसी मौलवी का हवाला दे दिया कि वो मैं फला मौलवी से मिला, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सका, यानी उससे वो ये दलील लाता है कि किसी आलिम के पास इस बेवकूफ़ की बात का जवाब ही नहीं है, तेरी बात के जवाब के लिए इतनी काफ़ी है कि तुझे मेरे मौला ने फरमाया कि तू वो है जो जाहिलों से जहालतों को जमा करता है, गुमराहों से गुमराहियों को जमा करता है, और जाल डाले बैठा है मोमिनीन की, मुस्लिमीन की आबादियों में, मैंने एहतियात से काम लिया, जाल डाले, जैसे वो शिकारी कांटा डाल के बैठता है ना मछली फंसाने के लिए, ऐसे ये बैठे होते कि नौजवानों को कैसे बचाया, कैसे फंसाया जाए, उनके लिए अट्रैक्शन कैसे पैदा किया जाए कि ये हमारे करीब आ जाएं, और जब हमारे करीब आ जाएंगे बस फिर हमारे काबू में आ गए, लिहाजा ऐसी चीज़ें पुरकशिश चीज़ें लेकर आओ, नई नई चीज़ें लेकर आओ, इख्तिरा, मौला फरमाते कि कहता ये नजर आएगा तुम्हें कि मैं बिदअतों से दूर रहता हूँ, जबकि यही उसका ओढ़ना बिछोना है, यानी दीन में हाथ डालता है, दीन में तहरीफात करता है, कहता है कि मैं इनसे दूर हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, जबकि इन्हीं में रहता है, इन्हीं में इसका ओढ़ना बिछोना है, क्या कहता है? किताब के मतालिब को इधर से उधर करता रहता है, हमलल किताब अला आरा ही, किताब उठाता है मगर किस लिए? अपनी जाती राय पर उसको तत्बीक करने के लिए। मौला फरमा रहे हैं कि सहारा लेगा किताब का, सहारा लेगा कुरान का, मगर किस लिए? अला आरा ही, अपनी राय पर उसको, ये तफसीर भी राय करेगा, अपना मतलब निकालेगा, वो मतलब नहीं जो मासूम ने बयान किया, वो मतलब नहीं जो उसका होना चाहिए, मुतशाबे मुतशाबे, कहता है कि मैं मुतशाबे से बचता हूँ, जबकि मुतशाबे में पड़ा रहता है, गर्क रहता है, ऐसी मुतशाबे आयत निकालेगा जिसके बहुत सारे माने निकलते हो, ताकि बच्चों को जवानों को बहकाने में आसानी रहे, लोग कहे हाँ कुरान ही तो पढ़ रहा है, ये आज के खवारिज क्या कुरान नहीं पढ़ते, क्या कुरान की आयत पढ़ा के इन्हें बहकाया नहीं जाता, उनके पास भी तो कुरान है ना, वो भी तो गले में हमाइल करके फिर रहे हैं, यही तो मौला फरमा रहे कद हमल अल किताब अला आरा ही, अपनी राय पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर ढाल देता है, युहव्विनुल हक्का अला अहवाही, और हक को बदल देता है, हक को तब्दील कर देता है, अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए क्या करता है, हक को बातिल, बातिल को हक बना देता है, और कुरान मजीद जा बजा क्या इरशाद फरमाया परवरदिगार ने, एक ही मफहूम लफ्ज बदल गए, वला तक्तुबुल हक्क बिल बातिल, या कहीं वला तलबसुल हक्क बिल बातिल वतक्तुमुल हक, ये सही आयत, वला तलबसुल हक्क बिल बातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तालमून, और कहीं वअंतुम ला तालमून, सवालिया निशान है, क्यों लिबास पहनाते हो हक को बातिल का, बातिल को हक का, और हक को छुपाते हो, वतक्तुमुन अल हक, हक को छुपाते हो जबकि तुम्हें मालूम है कि हक क्या है, इन्हें मालूम है, लेकिन शैतान के आलाकार, शैतानी ताकतों के आलाकार, अरबों खरबों माल लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है, किसको बिगाड़ने के लिए, फिरौन ने सारा माल कहाँ लगाया था, जनाबे मूसा के रास्ते को रोकने के लिए लगाया था ना, कि मूसा मत आए, बनी इसराइल में गद्दार पैदा कर दिए थे ना, जो एक एक घर की खबर देते थे कि इस घर में औरत खातून उम्मीद से है, और उसके लोग जाते थे जल्लाद पेट चाक करके बच्चे को निकाल के कत्ल कर देते थे, ये खबरें कौन देता था, किब्ती थोड़ी देता था, किब्ती नहीं, फिरौन ने मुस्कुरा रहा था, फिरौन खुश हो रहा था, कहाँ से आएगा मूसा, कैसे आएगा मूसा, मैंने एक एक घर पर पहरा बिठा दिया, हर घर में मेरे जासूस मौजूद है, हमसाया हमसाए की जासूसी कर रहा है भाई, खबरें दे रहा है। और उसी में अल्लाह ने एहतमाम किया कि इत्मीनान रखो। और इसीलिए जब वो आखिरी आने वाला उसका नूर इस ज़माने में आ रहा था और बुलाया था, दसवें इमाम ने अपनी फूफी जनाब हकीमा खातून को, और उन्हें कहा था कि वो आएगा, आज की शब ख़त्म होके सुबह वो आएगा। और जब वो आप जनाब नरजिस के हुजरे में गई और वापस आके फरमाया कि मैं तो कोई ऐसी आसार नहीं देखती, तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था कि आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आया था। इसी रिवायत को गुमराह करने के लिए कुछ लोग दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं, दूसरी दलील कायम करते हैं। तुम्हें तारीख पता ही नहीं, जाहिलों से जिहालतों को समेटने वालों के सामरा में पहरा था, घर में कनीजे भी मुखबिर थी, हर वक्त देखा करती थी कि बारवा ना आए, बारवा ना आए। बनी इसराइल में क्या था? यही था, एक एक घर पे पहरा था, मगर अल्लाह का वादा था कि आसारे हमल जाहिर नहीं होंगे, आसारे हमल जाहिर नहीं होंगे, नहीं हुए जाहिर, मूसा आ गए। तो यह सबब था कि जनाब नरजिस खातून, क्योंकि नरके में हैं, घर में भी जासूस हैं कैदियों की, उसकी कनीजों की सूरत में, लिहाजा इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं ये आने वाला वैसे ही आएगा जैसे मूसा आए थे। क्यों? जनाब हकीमा खातून गवाह है ना, क्यों इससे पहले क्यों नहीं कहा? ग्यारहवें इमाम की विलादत पे किसी ने क्यों नहीं कहा? दसवें इमाम की विलादत पे क्यों नहीं कहा? वो हुसैन जो 6 माह या 6.5 माह रहा रहमे मुबारक है, जिसका नूर, जिसका मस्कन था, इस नूर का मस्कन था वो रहमे मुबारक है फातिमा। या तो इनकार कर दो कि नूर हुसैन वहां नहीं था, किसी ने ऐसा सवाल किया, लेकिन जनाब हकीमा खातून ने किया। क्यों किया? इसलिए कि पहली बार देखा ये मंजर। कैसा नहीं? तो इमाम ने बता दिया, क्योंकि हिकमत है, ये वैसे ही आएगा जैसे मूसा आया था। तो घर घर में मुखबिर बैठे थे ना, एक घर से दूसरे घर। तो फिरौन ने माल कहां लगाया था? इधर माल लगाया था, करोड़ों अरबों खरबों। तो उसने देख लिया बाहर से नहीं मारा जा सकता, बाहर से शिकस्त नहीं दी जा सकती। हर जगह देखा कि नहीं देखा? लुबनान में देखा नहीं देखा? जमहूरी इस्लामी में देखा नहीं देखा? इराक में देखा कि नहीं देखा? शाम में देख रहा है कि नहीं देख रहा? कितनी बड़ी चढ़ाई करूं, लाखों दहशतगर्द घुसेर दूं, मैदान में इनको नहीं हराया जा सकता, मैदान में इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसीलिए तो आज भी जहां भी हमला करेगा छुप के हमला करेगा ये बुजदिल दुश्मन, इसमें हिम्मत ही नहीं कि आपके सामने आके लड़ ले।
लब्बैक।
अब समझ में आ गई बात? तो कहां खर्च हो रहा है करोड़ों अरबों? अब समझ में आ गया कि बाहर से कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा अंदर से प्लांटेड प्रोग्राम, पहले से मंसूबा बंदी के तहत प्रोग्राम, इनकी बस्तियों में, इनकी आबादियों में फैला दो। सब सुन रहे हैं, मेरी भी सुन रहे हैं, और उनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं इस वक्त, समझ रहे हैं ना? उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे को कैसे खामोश कराएं भाई। अब तो परवाह भी नहीं खामोशी की, इतने जहनों दिलों में ये बातें उतर चुकी मेरी कि मुझे परवाह भी नहीं कुछ भी हो जाए मेरे साथ। तो इस वक्त भी सुन रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आपसे ज्यादा कान लगा के सुन रहे हैं और तलाश भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कोई जुमला तो मिले, पकड़ में तो आए कहीं से ही मौलवी। फिर सुबह होने से पहले पूरी दुनिया में इसका रिकॉर्ड लग जाए, सोशल मीडिया पे इसको बेइज्जत कर दिया जाए। मेरी इज्जत है क्या? اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو قوم میں بدنام کر دیا جائے، کس چکر میں ہو اس کی پرواہ نہیں مجھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عزت اور ذلت کا معیار ہے کیا، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سنو، اگر عزت اور ذلت کا معیار وہ ہوتا جو دنیا نے بنایا ہے تو کوئی دنیا میں عزت دار بچتا ہی نہیں، سب ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ وقت محدود ہے تو ایک جملہ معیار کا تو آپ کو دے جاؤں، ایک قرآن کی آیت اور پھر اس کے بعد درایت، روایت اور درایت دونوں ہی اس میں آ جائے گی، روایت اور درایت تینوں چیزیں آتی، پیش کرتا ہوں۔ آیت وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین، بس عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یہ ہے آیت۔ روایت حسین کربلا میں ارشاد فرماتے ہیں، ہے ہات من الذلہ بعید ذلت، تو مطلب سن لو، دور ہے ذلت، یعنی ساری دنیا بھی مل کر چاہے ہمیں رسوا نہیں کر سکتی، معاذ اللہ ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، یہ ہے روایت۔ درایت کیا ہے؟ درایت یہ ہے کہ بتاؤ، پوری دنیا نے مل کر یہ چاہا اور بظاہر کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، خاندان رسول سے زیادہ کائنات میں کوئی معزز خاندان نہیں، کوئی محترم خاندان نہیں، عالمین میں خاندان رسول سے زیادہ عزت والا خاندان کسی کا نہیں۔ دنیاوی معیار کیا ہے عزت اور ذلت کا؟ سب سے بڑی توہین کسی کی آج بھی یہ ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر لے آؤ، ایسے ہی ہے نا، مر جائے گا، مار دے گا، خودکشی کر لے گا، کنویں میں وہ بیبیاں چھلانگ لگا دیں گی، راتوں رات بستی چھوڑ کر چلے جائیں گے لوگ، کہ اب کس منہ سے اس آبادی میں رہیں گے، ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے، ہمارے اہل بیت کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا حسین نے تم یہ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ ہے ہات من الذلہ، بعید ہے، بعید ہے ہمیں کوئی معاذ اللہ ذلیل کر دے، ہمیں رسوا کر دے۔ تو دنیاوی طور پہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل انجام دیا گیا کہ جس سے اولاد رسول، خاندان رسول کی معاذ اللہ توہین کی جائے، مگر حسین نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، تب اسی واقعے کو، انہی واقعات کو، اسی سانحے کو جس کو یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے خاندان رسالت کی توہین کی، اللہ نے انہی واقعات کو قیامت تک کے لیے حسین اور حسین کے ساتھیوں کے لیے عزت بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ لبیک یا حسین، سمجھ میں آ گئی بات؟ کسے کہتے ہیں عزت اور ذلت؟ اس لیے ان ناچیز حقیر فقیروں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو زمین پہ اپنی حقیقت جانتے ہیں، ہم تو زمین پہ رینگنے والے معمولی سے کیڑے مکوڑے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، ہمارے جیسے نہ معلوم کتنے آ کے لاکھوں کروڑوں چلے گئے، ہم کسی خوش فہمی میں رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ایسا سلوک ہو تمہارے ساتھ تو سجدے شکر ادا کرو کہ اللہ انہی چیزوں کو تمہارے لیے انعام و اکرام میں تبدیل کر دے گا، اور جو ایسا کریں گے ان کو اللہ ذلیل رسوا کر دے گا، جو اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے راہوں میں کانٹے بچھائیں گے اسی صف میں شامل ہوں گے۔ تو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ کہا، کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اندر پلانٹڈ لوگ پروان چڑھا چڑھا کے لائے جا رہے ہیں، مارکیٹنگ کی جا رہی ہے ان کی، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کرنے والوں کے چہروں سے بھی نقابیں اتر رہی ہیں، पता चलता जा रहा है कि कहां से प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट करने वालों की भी डोरें पता चल रही हैं कि कहां से हिल रही हैं। इन प्रमोट करने वालों के पीछे भी कोई है, उनके पीछे भी कोई है, और आखिर में वही गोरा बहादुर है, आखिर में वही मिलेगी डोर जाके। इत्मीनान रखो, आज जो यकीन नहीं कर रहा मैं रहूं ना रहूं, कल तुम्हें यकीन आ जाएगा, क्योंकि हर सच्चाई कुछ अरसे बाद सामने आ जाती है ना, आ जाती है ना। सारी खयानतें, सारी गद्दारियां कभी नहीं छुपी, कूफियों की भी नहीं छुपी, शामियों की भी नहीं छुपी, आज के गद्दारों की गद्दारियां भी नहीं छुपेंगी। समझ गए बात? तो बस ये वो लोग हैं, ला यारिफो बाबल हुदा, ये हिदायत के बाब को जानते ही नहीं, इसे पता ही नहीं हिदायत का दरवाजा क्या है। फयत्तबेहू, ताकि ये उधर जाता है, इसे क्या मालूम हिदायत का, ये तो अपने आकाओं के इशारों पे चल रहा है, इसकी तो वहां से डोरियां हिलाई जा रही हैं। कौम में खराबियां पैदा करो, तो बनी इसराइल में इतनी खराबियां पैदा करने के बावजूद आने वाला आया कि नहीं आया? आया ना, उसी बनी इसराइल में यूशा बिन नून जैसे लोग मौजूद थे ना, यकीन के आलम में जी रहे थे कि कुछ भी हो अल्लाह का वादा है पूरा होके रहेगा, अल्लाह का वादा पूरा होके रहेगा। बस इसलिए हम जैसे गुलाम, नौकर, हकीर, नाचीज, तालिबे इल्म कभी भी नहीं घबराते। क्यों, हम क्यों परेशान हो? अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करो, जैसे अदा करने का हक है, परेशान नहीं होते हम, कभी घबराते नहीं। क्यों, हमसे ज्यादा फिक्र उसको है, हमसे ज्यादा फिक्र उसको है जिसका दीन है, हमसे ज्यादा फिक्र उसको है जो वारिस है सारे तबर्रुकात और सारी अमानतों का, जो वारिस है। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो जितनी मक्कारियां करना है कर लो। बस मौला फरमाते हैं कि ये वो होगा, इसको हिदायत का दरवाजा पता ही नहीं, तुम्हारी हिदायत क्या करेगा, कहां इसको हिदायत का मालूम, और ना ही ये, यानी इसको मालूम नहीं है कि हिदायत का दरवाजा कौन सा है। फयत्तबे ताकि उसकी इत्तबा करे, वलल अमा, ये गुमराही के दरवाजे को भी नहीं जानता। मजे की बात यह है, ना ही इसको गुमराही का दरवाजा पता। अरे तो अच्छी बात है, गुमराही का दरवाजा ना पता हो, लेकिन मौला क्या फरमाते हैं आगे, इसको गुमराही का रास्ता भी नहीं मालूम, दरवाजा भी नहीं मालूम कि अपने आप को उससे बचा सके। यानी ये इतना बड़ा जाहिल है कि ना हिदायत के दरवाजे को पहचानता है कि उसका इत्तिबा करे, ना ना गुमराही के दरवाजे को पहचानता है कि इससे अपने आप को बचाए। बस ये तो दुनिया के पीछे भाग रहा है। फ़ाइना तज़हबून वरना तौफ़कून, बस तुम कहां जा रहे हो और तुम्हें किधर हका के ले जा रहे हैं ये। अब मौला मोमिन से फरमाते, तुम कहां जा रहे हो और ये तुम्हें कहां भगा के लिए चले जा रहे हैं, जबकि आलामुल हुदा, हिदायत के आलम बुलंद है, नसबा आलामुल हुदा, नजर आ रहे हिदायत के आलम रोशन है, वाजे हैं, आयातुन वाजहतुन, उसकी निशानियां वाजे हैं, रोशन हैं, उसके बावजूद उतर जा रहे हो, उसके बावजूद तुम्हें बहकने का शौक है, तो यही तो छांटी होगी। इसके बाद जिंदगी रही, कल बात को आगे चलाएंगे, सख्त तो नहीं हो गया ज्यादा? या अब क्या किया जाए, या अल्लाह मोहम्मद माल हम। भाई बात यह है, देखिए सीधी सी बात है, कोई एक ऐसा भी तो होना चाहिए ना, सबकी मर्जी के कुछ ना कुछ है ना, अपने अपने रखे हुए हैं, तो भाई एक मुझ जैसा भी होना चाहिए ना, तो कोई ऐसी भी तो बात करना। तमाम मोमिनों मोमिनात की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज से चलवाते नायत फरमाइए। खैर, अगर इसी की परवाह कर रहा होता तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा होता। मैंने अर्ज कर दिया, मुझे तो इसकी परवाह होती नहीं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने, उस अल्लाह का शुक्र जिस अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि मेरी जबान से ये जुमले अदा हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करूँ उसका कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि तौफीक दी उसने मुझे कि मैं मौलाए आरिफान की ये चंद कलिमात आप तक तशरीह के साथ मुंतकिल कर रहा हूँ। हमारे लिए तो हुज्जत, जब अली गहवारे में हुज्जत है कि नहीं है, कल्ले अजदर चीरने वाला, लोग कहेंगे वो ये बात, हमारे यहाँ बुकरात भी बहुत है ना, बड़े बड़े पड़े हुए हैं, ऐसी रिवायतें पढ़ो तो उनकी बुकरातियत सामने आने लगती है, ये रिवायतें ज़ईफ़ तो कवी है। खुदा के बंदो, तमाम अम्बिया ने, मैं कह रहा हूँ आपसे, एलिया कौन है? अली है। अल्लाह ने जहाँ तमाम अम्बिया से रसूल की रिसालत का कलमा पढ़वाया है ना, वहीं अली की विलायत का इकरार भी लिया है, विलायत का, नबूवत का नहीं, रिसालत का नहीं, जो बात है वही कर रहा हूँ, इससे आगे मैं नहीं बढ़ता, इससे आगे मेरी हदें ख़त्म हैं, परे परवास जल जाएंगे, हर एक की हदें हैं, जनाब जिब्राइल की भी हद है, उससे आगे नहीं जा सकते, हम जैसु की भी हदें हैं, हम भी अपनी हदों से आगे नहीं बढ़ सकते। बेवकूफ़ बनाने वाले बच्चों से क्या कहते हैं बताओ, मौलवी क्या कहता है बैठ के कि हद से आगे ना बढ़ो मौला के फ़ज़ाइल में, अरे मौला के फ़ज़ाइल की भी कोई हद है? अब बताइए, जो भी ये जुमला सुनेगा डर जाएगा ना एकदम, कह लो भाई ये तो बात सही कह रहा है, मौला के फ़ज़ाइल की तो कोई हद नहीं। खुदा के बंदो, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो, मौला के फ़ज़ाइल की हद क्या है मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम, कौन जानता है मौला के फ़ज़ाइल को सिवाय अल्लाह के और सिवाय रसूल के, कौन जानता है? लेकिन मेरी तो हदें हैं ना, मेरी तो हदें हैं ना, मौला ने बना दी ना, कहीं से आगे मत जाना, यानी जहां रसूल को अल्लाह ने रोक दिया, रसूल रुक गए कि नहीं रुक गए? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए कि रूह अम्र रब्बी में से एक है, ऐसे ही है ना, रूह के बारे में सारा इल्म दिया रसूल ने लोगों को, नहीं दिया ना, क्योंकि रोक दिया अल्लाह ने, यसलून कानी रूह, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, बता दीजिए ये अम्र रब्बी में से है कि नहीं ऐसा? तो जब मौला ने फरमा दिया इससे आगे नहीं बढ़ना, तो मेरी हदें हैं ना, मौला की हदों की बात थोड़ी कर रहा हूं, मेरी हदें, मुझे क्या मालूम अली क्या है, मेरे लिए तो इतना काफी है कि कायनात का मौला है बस, मेरे लिए इतना काफी है कि जहां तक खुदा का रसूल रसूल है वहां तक मेरा अली भी मौला है, वो कायनात का रसूल है तो ये कायनात का मौला है, इसीलिए मैं मौलाए कायनात इत्मीनान से कहता हूं, कहता हूं ना, इसलिए बताता, कदम कदम पे बंद बांधता हुआ चल रहा हूं। तो कल्ले अजदर चीरा है कि नहीं चीरा, वो मैंने बता दिया आपको, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, बचपन में कई बार पढ़ चुका, तकरार नहीं करना चाहता, बस एक जुमले में इशारा करके जाना चाहता हूं, बचपन में जंग नहीं लड़ी मक्के में, अबू तालिब के बच्चे ने इन काफिरों के बच्चों की हड्डियां पसलियां तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तोड़ी ना, बचपने में ही तो बस असी अली अली है, गहवारे में हो जब भी अली है। और अगर अब भी किसी को शक है अली की शीर खारगी की शजात में, कल्ले अजदर के चीरने में, तो आप कर भला और नन्ने से अली को देखो, आओ अली असगर को देखो, अब भी अगर शक है तुम्हें कि अली क्या था, अली क्या है, अली क्या नहीं था, अब भी शक है तो आओ वो शिशमाहा अली देख लो करबला का, नन्ना अली, छोटा अली, अली असगर, अली असगर, अब तो पूरी दुनिया में यौम अली असगर मनाया जाता है, यानी इस मुहर्रम से पहले जिन घरों में विलादत हुई हो, माएँ मासूम बच्चों को, शीर खारों को कफन पहना के लाती हैं, मैंने मंजर देखा ना, वो मंजर बयान कर रहा हूँ, बगैर देखे बात नहीं कर रहा, और अहद करती हैं उन बच्चों को फिजा में बुलंद करके, इमाम ज़माना से अहद करती हैं वो ख़वातीन कि मौला इस नियत से पाल रहे हैं, इस नियत से ये जवान हो बड़ा हो कि बड़ा होकर आपका सिपाही बने, आपका नासिर बने, उस दिन को करार दिया गया है यौम अली असगर, पूरी दुनिया में यहां भी मनाया जाने लगा, आप तो खैर वैसे भी मनाते ही हैं, अली असगर का जिक्र करते ही हैं, लेकिन एक दिन अब मखसूस कर दिया गया अली असगर के नाम, आओ अली असगर को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि फातह खैबर क्या होगा जब फातह करबला ऐसा है, अली असगर का लकब क्या है, फातह जंगे करबला, फातह करबला, علی اصغر کے چچا کا لقب ہے فاتح فرات، فاتح فرات ہے عباس. یہ منصب اللہ نے اس ماں کو دیا جو ماں شب عاشور روتی رہی، اس بات پر روتی رہی کہ صبح میں کیا قربانی دوں، میرا تو کوئی جوان بیٹا ہے ہی نہیں، چار سال کی بچی ہے، چند مہینے کا یہ شیرخوار ہے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، گیارہ مہینے، جو بھی رکھ لو بھائی، اس میں کائی کی بحث ہے، ہے تو شیرخوار. یہ گہوارے میں لیٹا ہوا شیرخوار، کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا، کل میں دکھیاری بھی کچھ تو پیش کرتی اپنے مولا کی خدمت میں، اپنے والی کی خدمت میں، اس پر سے قربان کرتی. رو رہی، کیسا منصب دیا اللہ نے اس ماں کو، اس کے ننے سے شیرخوار کو فاتح جنگ کربلا بنا دیا. اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ قیامت تک کے لیے باطل کی شکست کا استعارہ بن گئی، علامت بن گئی باطل کی شکست کا. تبسم علی اصغر تیرا جواب نہیں، ایک مسکراہٹ علی اصغر کی. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے تو روایت نہیں، میں روایت کہہ کے نہیں پڑھ رہا، اس کو روایت نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب ماں شب عاشور یہ تمنا کرتی ہوگی، علی اصغر گہوارے میں ہمک ہمک کے سمجھانے کی بتانے کی کوشش کرتا ہوگا، مادر گرامی پریشان کیوں ہیں، کیوں پریشان، ذرا اثر عاشور آنے دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا علی اصغر کیا کرتا. خیر، صبح ہوئی، ایک ایک کر کے مجاہد جا رہے ہیں اور حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے. معصوم بچے بیٹھے ہیں نا یہاں، یہاں میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے معصوم بچوں کو آج کی مجلس کیا ہر مجلس میں لے کر آتی ہیں. پروردگار تمہارے سہنوں میں ان پھولوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، تمہارے آنگن ان معصوم بچوں کی خوشبو سے مہکتے رہے. پروردگار انہیں عمر نوح عطا فرمائے. ایک بار اپنے معصوم بچے کے چہرے پہ نگاہ ڈالو اور پھر سوچو علی اصغر کیا ہوگا، عمر رباب کا علی اصغر کیا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا علی اصغر اس وقت. سارا دن جاتے رہے، حسین کی آغوش میں آتے رہے، اور اب کوئی نہیں بچا نصرت کرنے والا. حسین کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا پکار رہا ہے، هل من ناصر ينصرنا، هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہم حال رسول کی نصرت کرنے والا، ہے کوئی ہم اہل بیت، حرم اہل بیت کا دفاع کرنے والا. کوئی جواب نہیں ہے کہیں سے، کوئی جواب نہیں. بس حسین کے کانوں میں گریے کی آواز آئی خیمہ گاہ کی طرف سے، بیویوں کا اجتماعی گریہ. واپس پلٹے، خیمے میں داخل ہوئے، ابھی زندہ ہوں میں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آگے بڑھ کر بتایا بہن نے، ماں جائے آپ کا استغاثہ سن کر یہ ننھے سے شیرخوار نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ بابا کا استغاثہ سنا، علی اصغر نے مچلنا شروع کر دیا، ہمکنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میری بات کو سمجھ جائیں بیویاں کہ مجھے میدان میں جانا ہے بابا کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جب علی اصغر نے دیکھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو علی اصغر نے ایک کروٹ لی، اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا. اب حسین اور علی اصغر میں آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، کیا چاہتے ہیں علی اصغر؟ سمجھ لیا حسین، اور کہتے ہیں جناب عمر رباب سے لاؤ، بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دو. کملایا ہوا پھول ہے جناب عمر رباب کا، کتنے پہروں کا پیاسا ہے مجھے نہیں معلوم، سات تاریخ سے پانی بند ہوا، کب ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، کیونکہ یہ تو جملے ہیں نا، रिवायत में हुसैन ने खुद फरमाया था इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी जान सब फिदा हो आप पर ए करबला वालो, लाओ इस मासूम को मुझे दो, इसकी तो जंग नहीं है ना, शीरखारों से कैसी जंग है, मुझसे लड़ाई है, लाओ। धड़कते दिल के साथ माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को हुसैन की आगोश में दे दिया। हुसैन ने अबा का साया किया, खेमे से बाहर निकले, करीब हुए लश्कर आदा के चलते जा रहे हैं, सिपाहियों ने देखा और वो ये समझे कि हुसैन अब कुरान लेकर आ गए। इनको क्या मालूम कि अब तो वैसे भी हुसैन को जीने की कोई तमन्ना ही नहीं है, ही नहीं कोई, किसके लिए जिएगा हुसैन। बस हुसैन अबा का दामन हटाते हैं, अपने मासूम शीरखार को सामने कर देते हैं, देखो तुमसे मेरी लड़ाई है, तुम्हारी जंग मुझसे है, ये शीरखार है, ये मासूम है, इससे कैसी जंग, बहुत प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। कोई जवाब ना मिला, हुसैन ने जलती रेत पर इस शिशमाहे को रख दिया, खुद पीछे हट गए। मैं दूर हट जाता हूं, तुम में से एक आगे बढ़ो, इस मासूम को पानी पिला दो। अज़ादारों, मैं जो पढ़ रहा हूं ना, बड़े बड़े उलमा ने ये मंजर कशी की है, जो मैं मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि अली असगर की कैफियत उस वक्त माहिये बेआब की सी थी। माहिये बेआब, बच्चों को समझा रहा हूं कि वो मछली जिसे पानी से निकाल के साहिल पर डाल दिया जाए और तड़पते तड़पते जब बेदब होने लगती है तो आखिर में उसके सिर्फ लब हिल रहे होते हैं, बस ये कैफियत बयान की जाती है अली असगर की, कि अली असगर माहिये बेआब की तरह जलती रेत पर पड़ा था, मगर फिर भी इन जालिमों को तरस नहीं आया। हुसैन ने अपने लख्त जिगर को उठा लिया, दोनों हाथों पे बुलंद किया बच्चे को और लश्कर के सामने दाएं बाएं सब तरफ फिराया, दिखाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब हुसैन ने बच्चे को आगोश में सीधा किया, अब गुफ्तगू हो रही है बाप और बेटे के दरमियान, मेरे लाल अली असगर, तू भी तो उच्चत खुदा का बेटा है, और जबान बेजबानी में कोई बईद नहीं, अली असगर ने भी कहा हो बाबा बहुत देर हो गई, अब मुझे भी तो इज्न वगा दीजिए, अब मुझे भी तो लड़ने की इजाजत दीजिए, मुझे भी तो हमला करने की इजाजत दीजिए। हुसैन से इजाजत मिली, बेटा उज्जत तमाम कर, तू उज्जत खुदा का बेटा है। अली असगर ने हमला किया, मगर मुझे यकीन है कि हमला करने से पहले एक बार नजरें घुमा के अली असगर ने खेमे की तरफ जरूर देखा होगा। माँ खेमे की ओर से देख रही है अपने बच्चे की जंग को, देखा अली असगर, फिर नजरें घुमाई लश्कर की तरफ और हमला किया। कैसा हमला, कि लश्कर पस्पा हो गया कूफियों और शामियों का, हथियार फेंक दिए, मुंह फेर फेर कर रोने लगे सब। हमला ही ऐसा था अली असगर का, जो किसी ने ऐसा हमला किया ही नहीं था। बस खुश्क होठों की कमान में सूखी जबान का तीर रखकर चलाया था, नन्नी सी जबान खुश्क होठों पर फिराई थी, बस ये मंजर नहीं देखा गया उनसे जो कत्ल करने पर जमा हुए हैं हुसैन और औलादे हुसैन, मुंह फेर फेर कर रो रहे। कितने ही सिपाही शमशीरें लेकर पहुंच गए इब्ने साद के सर पर, हुक्म दे इस बच्चे को पानी पिलाने का, वरना अभी आपस में तलवार चलती है, इसे कैसा झगड़ा, इस शीरखार को तो पानी पिला दे। घबरा गया पिसरे साथ के, ये कैसा मुजाहिद आ गया मैदान में, ऐसा हमला तो ना अली अकबर ने किया, ना अब्बास ने किया, ना कासिम ने, ना उन्होंने मोहम्मद, ये कैसा हमला है, कैसा मुजाहिद है। चिल्ला कर कहा, हुरमुला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला मलून तीर से शोभा, देखिए जहर का सूफार, यानी जहर में बुझा हुआ तीर, और तीर से शोभा, यानी एक तीर नहीं तीन मुंह वाला तीर, तीर से शोभा आहनी तीर। ये इसने अपनी कमान में जोड़ा और निशाना लिया अली असगर की गर्दन का। इख्ता कलाम अल हुसैन कहा था, उमर साद ने क्या कहा था, हुसैन के कलाम को कता कर, ये थोड़ी कहा था मासूम की गर्दन पे तीर चला दे। अब मुझे नहीं मालूम किसका निशाना लिया, लेकिन मेरे अजदाद में से एक जद यहाँ पर इस मंजिल पर आके यही जुमला पढ़ते थे, और मैं हमेशा, मेरी आदत है उन्हीं का जुमला पढ़ता हूँ ताकि उनकी रूह मुझसे खुश रहे, कि अरे हुरमुला ने निशाना लिया था हुसैन की गर्दन का, मगर अभी हुसैन का आखिरी मुजाहिद जिंदा है, आखिरी सिपाही बाकी है, आखिरी शेर मौजूद है। याद है अली असगर को, मेरे भाई ने भी दिफा किया है, मेरे भाइयों ने दिफा किया है, मेरे चचाओं ने दिफा किया, लिहाजा तैयार हो गया अली असगर हमले का जवाब देने के लिए। इधर उसने तीर कमान में जोड़ा, निशाना लेना शुरू किया, इधर अली असगर भी तैयार हुआ, उधर तीर चला, अली असगर तैयार, इधर तीर नज़दीक पहुंचा, इस मासूम ने हुमक की अपनी गर्दन को सामने कर दिया। देख लो, सब जगह देख लो, पहले तीर ने अली असगर के गले को छेदा है, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। ढलक गया मन का, ढलक गया अली असगर का, गर्दन ढलक गई दाएं तरफ, तीर इधर से लगा था ना, इधर से निकल गया। अब जब गर्दन ढलक गई तो रुख किधर हुआ, खेमे की तरफ। यह है वो अबदी मुस्कुराहट, अबदी तबस्सुम, जैसे अपनी मां को देख के मुस्कुरा रहा है, अब तो राजी हो ना मां, देखो मैंने कैसी जंग की, देखो मैंने अपने बाबा का कैसा दिफा किया। ये एक मुस्कुराहट कयामत तक के लिए यजीदियत की शिकस्त का ऐलान है, इस्तियारा है, अलामत। अरे इतने पहरों के प्यासे बच्चे के बदन से लहू कितना निकला होगा, एक चुल्लू से ज्यादा तो नहीं। ऐ खाके करबला, सबका लहू तेरी जमीन पर बहा है, ऐ सर जमीने करबला, सबका लहू तेरी खाक में जज्ब हुआ, और अभी कुछ ही देर में हुसैन का लहू भी जज्ब होने वाला है, खाक के शिफा बनने वाली है तेरी खाक। लेकिन क्या है अली असगर के खून में, ना जमीन कबूल करेगा, ना आसमान कबूल करेगा, ना जमीन कबूल करेगी, ना आसमान कबूल करेगा, ना जमीन कबूल करेगी, बस एक हस्ती है रूए जमीन पर हुसैन। तो उसने ये चेहरे पे अपने कहते हुए खून मला, नाना इसी अपने बच्चे के खून भरे चेहरे के साथ कयामत के दिन तेरे सामने देख नाना, क्या किया तेरी उम्मत ने मेरे से, क्या किया मेरे बच्चों के साथ तेरे कलमा पढ़ने वालों ने, नाना क्या कसूर था मेरे शिशमाए अली असगर का। बड़े खेमागाह की तरफ कहते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बिकज़ाइहि व तस्लीमन अम्रे, माबूद तेरा ये बंदा हुसैन सरे तस्लीम खम है तेरी बारगाह में, कोई शिकवा नहीं है अल्लाह की बारगाह में हुसैन का, माबूद राजी हूं जो तूने लिख दिया मेरे हिस्से में इम्तिहान, तेरा बंदा हुसैन राजी है, राजी है तेरे कजा व कद्र के फैसलों पे, तेरा हुसैन राजी है। खेमे तक पहुंचे, मगर फिर सोचा कैसे लेके जाऊं माँ के सामने, क्या सोचेगी माँ कि पानी पिलाने का कहकर गए थे, लाशा वापस आ रहा, वापस पलटे। फिर हिम्मत की हुसैन ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बिकज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे, फिर वापस। सात बार ये अमल दोहराया हुसैन ने, बताइए किसी और का लाशा लाने में ऐसा किया,
बड़ी मुश्किल से लाए हैं लाशें सबके, मगर ऐसा नहीं हुआ कि जाते हो फिर पलट जाते हो, जाते हो फिर पलट जाते हो। सातवीं बार हिम्मत की, दरे खेमा पर पहुंच के आवाज दी, ले रुबाब अपने बच्चे को ले जा। बस चंद जुमले आजादारों सुनो। मां से पहले एक मासूम बच्ची दौड़ी दौड़ी आ गई। तुम्हारे ये मासूम बच्चे जिनकी आंखों में मैं अश्क देख रहा हूं, खुद देख रहा हूं, सलाम हो मेरा इन माओ पर जो अपने मासूम बच्चों को इस अकीदत के साथ इस फर्श अज़ा पर लेकर आती। ए मासूम बच्चों, सबसे पाक तुम्हारे आंसू हैं, क्योंकि तुम्हारा ये बचपना अभी आलूदा नहीं हुआ, अभी आलूदगियों से पाक है। सबसे पाक है तुम्हारे आंसू, सबसे पाक पाकीज़ा है आंसू जो तुम हुसैन के जिक्र पे बह रहे हो। ऐ मासूम बच्चों, असगर पर गिरिया करते हुए दुआ जरूर किया करो, फतह की दुआ, जहूर की दुआ, मोमिनीन की कामयाबियों की दुआ, दहशत गर्दों की नाबूदी की दुआ। ऐ मासूम बच्चों, तुम भी पाक हो, तुम्हारे आंसू भी सबसे ज्यादा पाक है। सुनो, मां से पहले एक मासूम बच्ची दौड़ी दौड़ी आ गई। 4 साल की बच्ची आने के बाद गिला करती है, बाबा अली असगर को पानी पिला दिया, मैं तो प्यासी हूं, मैं प्यासी हूं। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, अबा का दामन हटा दिया। इस मासूम बच्ची ने देखा असगर के लाशे को, बस एक जुमला कहा, सकते के आलम में, हैरानगी के आलम में, बाबा बाबा इस 9 साल के, इस उम्र के बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं। बस मुख्तसर करता हूं, रुखसत हुए अली असगर, माँ से, बहनों से, फूफियों से रुखसत किया हुसैन ने, अली असगर को लेकर आए पुश्ते खेमा पे, ताकि कोई देखे नहीं, ताकि कोई देखे नहीं, पुश्ते खेमा पर लाए। जानता है ना मेरा मौला, जानते हैं मेरे मौला हुसैन के सबके सर कलम किए जाएंगे, सबके सर कलम करके नैजों पे बुलंद किए जाएंगे। डर है हुसैन को मेरे मासूम बच्चे का सर ना काट दे, मेरे शीरखार का सर कलम ना कर दे। अपनी तलवार से नन्ही सी कब्र बनाई, असगर को छुपाया, आंसुओं से तराई की कब्र की, और फिर उसके बाद कब्र के निशान को मिटा दिया, कब्र के निशान को मिटा दिया, ताकि मालूम ना हो कि मैंने यहां कुछ छुपाया है। मगर हुआ क्या, असरे आशूर जब शोहदा के सर काटे गए, गिने गए, मालूम हुआ कि एक सर कम है। जितने काटे थे, उन जितने मारे थे मैदान में, उनमें एक सर कम है। फिर गंजे शहीदा में तलाश किया गया, कत्लगाह में तलाश किया गया, एक सर कम मिला। किसी ने कहा कि आखिरी वक्त में हुसैन पुश्ते खेमा पे तलवार से कुछ खोद रहे थे, कुछ छुपा रहे थे। नैजा बरदार रिसाले को हुक्म हुआ, पुश्ते खेमा की सारी जमीन खोद डालो। नैजा बरदार सवार हुए, दौड़ते जाते हैं, नैजों से पुश्ते खेमा की जमीन खोदते जाते हैं। माँ को खबर मिली, माँ का कलेजा हलक में आ गया, माबूद मेरे असगर की खैर हो, मेरे असगर की खैर हो। माँ ये दुआ कर रही है, मगर अली असगर की तमन्ना कुछ और है, अली असगर की आरज़ू कुछ और है। ऐ मेरी माँ, ये दुआ न कर, ये दुआ न कर, अरे तेरे अली असगर को ये गवारा नहीं कि सबके सर नैज़ों पर हो।